पुनर्नवा उपभोक्ता दृष्टि का अस्वीकार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऐतिहासिक उपन्यास वस्तुतः इतिहास और आलोचना तथा आलोचना और रचना के वागर्थ संपृक्त संबंधों के चरितार्थता के प्रमाणिक दस्तावेज हैं, जिनकी रचना भारतीय चिंताधारा साहित्य और कथा साहित्य के स्वाभाविक विकास प्रक्रिया की ऐतिहासिक अवधारणा तथा साहित्य और कला मूल्यों की जीवंत परंपरा की अपेक्षा में संभव हुई है। इसलिए आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में ऐतिहासिक यथार्थ का विवेचन करते समय उनकी ऐतिहासिक अवधारणाओं और आलोचना मूल्यों को नज़रअंदाज कर देने से बहुत संभव है कि हमें कदम कदम पर ऐतिहासिक असंगतियों और उपन्यास की आधुनिक रचनाशीलता के प्रतिमानों से भी टकराना पड़े। ध्यान देने की बात है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में परंपरा जड़ तत्वों अथवा मृत मूल्यों का जमाव मात्र नहीं है और न ही इतिहास को केवल तिथियों और घटनाओं का संग्रह मानने को तैयार हैं। उनकी दृष्टि में परंपरा एक ऐसी जीवंत और गतिशील प्रक्रिया है जो संपूर्ण मनुष्य के संघर्ष और सृजन तथा प्राचीन और नवीन के ग्रहण और त्याग के द्वंद्वात्मक संबंधों में सतत प्रवाहमान है। एक वर्ग विभाजित समाज में सत्तासीन प्रभुवर्गीय हितों को संरक्षित करने वाले इतिहास साहित्य संस्कृति और धर्मशास्त्रों की लिखित परंपरा ही भारतीय इतिहास का मूल स्रोत नहीं है। इन स्रोतों को ही प्रमाण मानकर लिखा गया इतिहास राजाओं महाराजाओं की राजनीतिक विजय गाथा का तथ्यात्मक संग्रह भले ही हो, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे जनता के सांस्कृतिक इतिहास का एकमात्र प्रामाणिक स्रोत मानते हैं। सामान्य मनुष्य उनके साहित्य का लक्ष्य है और उनका इतिहास बोध इस मनुष्य की जय यात्रा का दोष करता है। यही कारण है कि सांस्कृतिक इतिहास के मौलिक स्रोत के रूप में वे सामान्य जन सामान्य की जनमानस की इच्छा आकांक्षा आचार विचार सुख दुख तथा संघर्ष और सृजन की प्रक्रिया और प्रभाव को अभिव्यक्त करने वाले लोकमत लोक विश्वास एवं परंपरा के विविध आयामों लोकगाथाओं कथानक रूढ़ियों किंवदंतियों लोकोक्तियों आदि के गहन अध्ययन और अनुसंधान को भी अत्यंत आवश्यक मानते हैं। कहना न होगा कि पुनर्नवा की कल्प सृष्टि का यही मूल आधार है। पुनर्नवा प्रकाशन क्रम में बाण भट्ट की आत्मकथा तथा चारुचंद्र लेख के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है, किंतु सहज पठनीयता और औपन्यासिक रचनाशीलता की दृष्टि से बाण भट्ट की आत्मकथा के बाद उसे द्विवेदी का दूसरा लोकप्रिय उपन्यास माना जा सकता है, जहाँ बाण भट्ट और भट्टिनी की यूटोपियाई प्रेम का अभिजात्य अपने बदेशपन की सीमा तक तद्भवीकरण की लोक परंपरा में ढलकर गप्प की मौलिक रचनाशीलता के ठेठ मिजाज को जीवंत बना देता है। वस्तुतः इस उपन्यास का कथासूत्र बाण भट्ट की आत्मकथा में सांकेतिक और अव्याख्यायित रह गया था, इसके चलते इसने अनेक इतिहासकारों के सामने अच्छी खासी परेशानी पैदा कर दी थी। गुफा के उस पार सम्राट समुद्रगुप्त का गरुण ध्वज पार आने के साथ ही बड़े नाटकीय ढंग से हर्षवर्धन के भी समकालीन बताए गए सामंत लोरिक देव की वह ऐतिहासिक अंगद कूद प्रसिद्ध इतिहासकार भगत शरण उपाध्याय के लिए भी एक अबुज पहेली साबित हुई थी। इसी प्रकार क्लासिकी संगम में बधे हुए बाण भट्ट और भट्टिनी के रोमांटिक प्रेम में स्वच्छंद प्रभाव का अभाव पाकर कई आलोचकों को भी मन महसूस कर रह जाना पड़ा था। ऐसा लगता है कि इतिहास और आलोचना के बीच से उठे इन सवालों से टकराते हुए उपन्यासकार ने भाषा और साहित्य के स्वाभाविक विकास के साथ ही अपने उपन्यासों की क्रमबद्ध स्वाभाविकता को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बाण भट्ट और लोरिक देव दोनों ही अनेक प्रवादों से घिरे हुए घर से भागे हुए तथा नारी उद्धार के माध्यम से देश के उद्धार में लगे हुए चित्रित किए गए हैं। आत्मकथा में बाण भट्ट महावारा के अवतार हैं और पूरी रचना में जलोघमग्ना सचराचरा धरा का स्वर सतत गूंजता हुआ सुनाई पड़ता है। उसी प्रकार पुनर्नवा में लोरिक अथवा गोपाल आर्य को महावरा की भांति धरती का उद्धार करने वाला कहा गया है। इन्वर्टेड कामा बुड्ढमाण धरे वियल को उद्धरी हणे हणाह दंत रूप करवाल हरु ल्वारिकु विडौ वराह जावण ल्वारिक करी पड़ई सिंह चबीडु चडक्कु ताव सुडरवई मथग यह पई पई बज्जर ढक। पुनर्नवा संस्कृत के श्लोक यहाँ प्राकृत दोधक में रूपांतरित हो गया है। रचना अथवा रचनाकार का उल्लेख न करने से संदेह उत्पन्न होता है कि यह कोई प्रामाणिक प्राकृत रचना है अथवा ब्योमकेश शास्त्री की गप्प। उनकी इस तरह की गप्पों से कभी कभी अच्छे से अच्छे संस्कृत पंडित भी गच्चा खा जाते हैं। कथाहम कालिंदी तीरे वाले चार चंद्रले के प्रसिद्ध श्लोक को लेकर पंडित विद्यानिवास मिश्र कुछ इसी तरह के उलझन में पड़ गए थे। वैसे यह आचार्य पद की गप भी हो तो लोक कथा के तद्भव परस्परा के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि भाषा साहित्य और परंपरा के प्रति द्विवेदी जी की दृष्टि विकासवादी है। इसीलिए संस्कृत हृदय, संस्कृत बुद्धि, संस्कृत वाणी के हिमायती पुनर्नवा के ब्राह्मण देवता अपने तत्समुखी शुद्धतावादी संस्कारों के चलते विदेशा के प्राकृत जनों के द्वारा गोपाल आर्य का उच्चारण गोपाल आरिक ग्वालारिक अथवा लोरिक के रूप में सुनकर भड़क उठते हैं और भाषा के इस भदेशपन का रोना रोते हुए इस गलत उच्चारण के लिए उन गंवारों को काफी फटकारते हैं। लेकिन लोक गायक रेभल के मुख से उपयुक्त प्राकृत दोधक को सुनकर उत्फुल्ल हो जाते हैं, वाह गवाई गांव के लोग भी अद्भुत काव्य लिखते हैं। पुनर्नवा वस्तुतः लोक गाथा, दंतकथा, लोक विश्वास और भोले विश्री अथवा भद्र लोग द्वारा उपेक्षित किंतु वर्तमान समाज में किसी न किसी रूप में जीवित लोक परंपराओं की अंधेरी दुनिया ही वह जमीन है जिस पर पुनर्नवा का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसमें इतिहास आलोचना और रचनाकार हो गए हैं। इसलिए बने बनाए इतिहास और पके पकाए साहित्य मूल्यों की अपेक्षा में पुनर्नवा के जीवंत समाज का सांस्कृतिक इतिहास देखने वाले को यदि तिथियों, घटनाओं और स्थानों की संगति दिखाई पड़े अथवा आकस्मिक संयोगों की भरमार से उपन्यास का यथार्थ बाधित होता हुआ प्रतीत हो तो कोई आश्चर्य नहीं। उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी और इतिहासकार नहीं बल्कि ऐसे इतिहास निर्माता और महान सर्जक हैं जिन्होंने लोक और शास्त्र के द्वंद्वात्मक परंपरा से अपने इतिहास बोध और रचनात्मक मूल्यों को स्वयं अर्जित किया है। ग्रहण और त्याग का संतुलित विवेक ही उनके इतिहास बोध का प्रतिमान है। उनका कहना है कि पोथियां पढ़ता हूं, उनका सम्मान भी करता हूं, पर लोक प्रवादों को हंसकर उड़ा देने की शक्ति अभी संचय नहीं कर सका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रवादों में मनुष्य समाज का जीवंत इतिहास सुरक्षित है। जब कभी लोक परंपरा के साथ किसी पोथी का विरोध हो जाता है तो मेरे मन में कुछ नवीन रहस्य पाने की आशा उमड़ उठती है। सब समय नई बात सूझती नहीं पर हार मैं नहीं मानता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथ। और जब भी कभी नई बात सूझी जाती है तो कोई भूली बिसरी परंपरा भी पुनर्नवा बन जाती है। पुनर्नवा में इस हार न मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी के अभिन्न हैं सहज बुद्धि के धनी पर अपने को उठट गवार मानने वाले सुमेर काका, जिनका हर अपना वाक्य पहली होता है जिसे बुझने के लिए श्रांता को उन्हीं की सहायता लेनी पड़ती है। पुनर्नवा में भी लेखक ने कविता और व्यवहार संबंधी जो पहली बुझाई है उसे समझने के लिए उसके व्यक्तित्व और विचार बोध का सहारा लेना पड़ता है। देवरात अपनी पालित कंधा मृणाल को महर्षि मर्दनी के स्थान पर सिंहवाहिनी की उपासना करने का सुझाव देते हैं कि महर्षि मर्दनी केवल भावलोक की साधना है, वह कविता में फपती है, व्यवहार में नहीं। नोटेड कामत पुनर्नवा। किंतु मृणाल का भोला मन जब सहज ढंग से उसे समझने का प्रयास करता है तो उसकी समझ में यह नहीं आता है कि जो बात कविता में फपती है वह व्यवहार में क्यों नहीं फपेगी। ऐसा लगता है कि उपन्यासकार ने कविता और व्यवहार संबंधी सवाल को जीवन के अनुभवों से प्रमाणित करने के लिए अपने ही व्यक्तित्व को द्विधा विभक्त कर लिया है। देवरात और सुमेर काका के रूप में एक के साथ पोथी और शास्त्र का ज्ञान तथा दूसरे के पास लोक जीवन का सहज अनुभव। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पांडित्य की लोकोन्मुखता और लोकोन्मुखी पांडित्य की विशेषता को व्यक्त करने के लिए एक नाटकीय शैली है। आखिर पुनर्नवा में व्योम के शास्त्री का मुखौटा भी तो साथ नहीं है। देवरात अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, नोटेड कामा, कविता भगवती वह माया की इच्छा शक्ति है, व्यवहार जगत उनकी क्रिया शक्ति का विलास है। इच्छा शक्ति कल्पलोक का निर्माण कर सकती है, क्रिया शक्ति केवल श्रेष्ठ पदार्थों तक सीमित है। मुझे ऐसा लगता है कि उपपन्न कवि चाहे तो कविता के कल्पलोक में फूल सी सुकुमार बालिका के वज्र कठोर महिष का निर्दलन करवा सकता है, पर व्यवहार जगत में यह संभव नहीं दिखता। इनोटिकाओं पुनर्नवा पोथी और शास्त्र के सहारे की गई कविता और व्यवहार जगत की जीवन निरपेक्ष व्याख्या मृणाल के प्रबोध मन को अबोध मन को आश्वस्त नहीं कर पाती और ऐसी कविता उसे निरर्थक प्रतीत होती है जो सामाजिक जीवन से कटकर केवल भाव जगत की वस्तु हो, वह जीवन की अपेक्षा में भाव जगत को समझना चाहती है। इसीलिए कई व्यवहारिक सवाल उसके सामने खड़े होते हैं। एनोटेड कामा, केवल पुरुष शक्ति की पूजा ही क्या स्त्री धर्म है? सिंहवाहिनी की उपासना का मतलब क्या इतना ही है कि महिष मर्दन का काम पुरुषों पर छोड़कर स्त्रियां उनकी आरती उतारा करें? स्त्रियों का धर्म के आगे बढ़कर धर्माचार अधर्माचार का विध्वंस करना नहीं है? यदि स्त्री पुरुष की सहधर्मिणी है तो सहधर्म में महिष मर्दन भी होना चाहिए, क्योंकि देवी सिंहवाहिनी भी हैं और महिष मर्दन भी। पिताजी क्यों इस बात को मानने में कुंठा का अनुभव करते हैं? इन ऑर्डर का आवंटन पुनर्नवा। स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर शास्त्रों की दृष्टि प्राय उपभोक्तावादी रही है और नारी की इच्छा आकांक्षा और सहज प्रेम भावनाओं को वर्जना मर्यादा और थोती नैतिकता के बंधन में जकड़ देने के पीछे एक अजीब कुंठा का भाव दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि पोती की भाषा बोलने वाले पिता के मानसिक कुंठा को मृणाल का अबोध मन सहज ही पहचान लेता है और लोक जीवन की अपेक्षा में शास्त्र प्रतिपादित भाव लोक को समझने का प्रयास करती है तो दोनों में उसे विरोध की स्थिति दिखाई पड़ती है। पिता का तर्क जाल वह जीवन की भाषा में बात नहीं पाती। यही सवाल जब उसने सुमेर काका के सामने रखा तो वे पहले ठठहाकर हंसे और फिर बोले, इनोटेड कमा, तेरे पिता देवराज पंडित हैं, जो कुछ कहते हैं तर्क के तराजू पर तौलकर कहते हैं, पर तेरा काका अटूट गंवार है। जवानी में उसने एक ही काम किया है, सीधे टूट पड़ना, फिर प्राण चाहे रहे चाहे जाए। बुढ़ापे में भी उसकी यही आदत बनी हुई है तो पूछना चाहती है कि भैंसा अगर चढ़ दौड़े तो तेरे जैसी लड़की को क्या करना चाहिए। तेरे काका का जवाब है, जो कुछ आसपास मिल जाए उसी से उस भैंसे को दमादम पीट देना चाहिए। नाक पर मार सको तो क्या कहना, आँख फोड़ सको तो और अच्छा। सिंह बाद में आएगा, पहली चोट तुम्हें करनी होगी। सुमेर काका एक ही बात जानता है, सज्जन है चरण की धूल लो, दुर्जन है नाक तोड़ दो। जो डरता है वह देवी की उपासना के बारे में पूछना ही छोड़ दे। देवी क्या है रे? तेरे भीतर जो अभय है वही देवी है। पिशाची क्या है जानती है? तेरे भीतर जो भय है वही पिशाची है। इनोटेड कमा बंद। कविता और व्यवहार के अंतर्विरोधी स्थितियों को इतनी स्पष्टता से व्यक्त करने वाले सुमेर काका की ठेठ व्याख्या स्वयं जीवन की भाषा में ढली हुई एक मोहक कविता है। यह शास्त्र के पहलुओं को बुझने वाला एक ऐसा लोक शास्त्र है जिसमें जिंदगी की भाषा है, जीने की कला है, धर्म और कर्म की संतुलित प्रेरणा है। महिषासुर मर्दिनी और सिंहवाहिनी के प्रतीक विग्रह को अथवा कवि के अर्थविहीन जड़ शब्द ये रासोन्मुखी स्तब्ध मनोवृत्ति के परिचायक हैं। जीवन ही कविता का अर्थ है, इसीलिए जीवन विहीन कविता निरर्थक है और अर्थविहीन शब्द। सुमेर काका इस सहज व्याख्या शब्द की सार्थक बनाने वाली कविता है और कविता के शब्दार्थ संपृक्त व्याख्या भी। कविता और व्यवहार की इस लंबी बहस में आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी शास्त्र को पोथी को यानी अपने ही पांडित्य को तोड़ते हैं, शब्दों को हींकते हैं, पोथी से हार जाते हैं, बुरी तरह हार जाते हैं पर हार नहीं मानते। यहाँ भी शास्त्र पक्ष के वाहक देवराज लेखक के पूर्व पक्ष के रूप में आए हैं तो लोकशास्त्र के वाहक सुमेर काका लेखक के उत्तर पक्ष का प्रतिपादन करते हैं। लेखक का निष्कर्ष पढ़ते हुए सुमेर काका कहते हैं, देख रे तेरा बाप शास्त्र का बड़ा भारी पंडित है, काव्य का, संगीत का, चित्र का, मूर्ति का सूर्योदय पारखी है, मगर मैं उसकी कमजोरी जान गया हूँ। वह इन बातों को तैयार माल की तरह देखता है। सुना जैसे अंगूठी बनाकर ले आता है तो ग्राहक उसे देखता है उसी प्रकार, मगर ज्ञान या रस तैयार माल की तरह नहीं होते। वे इतिहास में से पलते हैं और इतिहास को बनाते हैं, मगर मेरे मन में जो कुछ है उसे मैं प्रकट नहीं कर पाता। तैयार माल का दाम आंकने वाली बुद्धि मेरी मुझे मार गिराती है। अनपढ़ हूँ क्या करूँ, मगर जानता हूँ ठीक मैं कहता हूँ, सो हार जाता हूँ पर हार मानता नहीं। उसने तुझे कविता और व्यवहार का जो भेद बताया है ना, वह उसी तैयार माल का दाम आंकने वाली बुद्धि है। यूनाइटेड कमा बन। जाहिर है कि कला संस्कृति और साहित्य मूल्य समाज सापेक्ष रचनाशीलता में पलते हुए नई रचनाशीलता के निर्माण में सहायक होते हैं। उन्हें जीवन निरपेक्ष शाश्वत मूल्य अथवा पका पकाया माल मान लेना उस उपभोक्तावादी परंपरा की ओर इशारा करता है जो अपने जीवन को गलाकर माल तैयार करने वाली उत्पादक शक्तियों के वर्गीय हितों को बराबर नजरअंदाज करती आई है। अतः इस प्रकार के उपभोक्तावादी दृष्टि के अस्वीकार का साहस पुनर्नवा की आधुनिक रचनाशीलता का प्रमाण है। कहना न होगा कि पुनर्नवा की वस्तु संघटना का मूल आधार उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य भारत के छत्तीसगढ़ के सामान्य जन समुदाय को आंदोलित करने वाली लोरिक चंदा की प्रसिद्ध लोक गाथा तथा ब्रजप्रदेश में बहु लोक प्रचलित लहुरा वीर एवं मैना माजर देई की दंत कथाएं हैं, जिनके साहित्यिक रूप चंदायन और मैनास्वत आदि भी प्राप्त होते हैं। इन्हीं कालिदास के जीवन और साहित्य संदर्भों तथा शुद्ध मृच्छकटिक की प्राचीन कथा के साथ जोड़कर गुप्तकालीन उत्तर भारत के समाज का सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लोरिकायन के कथानायक लोरिक को मृच्छकटिक के गोप पुत्र आर्यक से अभिन्न मानते हुए उपन्यासकार ने पुनर्नवा में हलद्वीप से लेकर मथुरा और उज्जैन तक के सारे घटना चक्र के केंद्रीय चरित्र का निर्माण कर चौथी शताब्दी के गुप्तकालीन समाज, साहित्य, भाषा और कला संस्कृति की विकास प्रक्रिया में उसके ऐतिहासिक अस्तित्व को ऐतिहासिक विश्वसनीयता प्रदान करने में अपनी अद्भुत सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। मौखिक परंपरा में गाई जाने वाली लोक गाथा के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं, लोरकी और चरन्नी। लोरकी लोरिक के शौर्य को दृढ़ करने वाली वीर गाथा है, जिसमें लोरिक चंद्रा का प्रेमाख्यान भी गौण रूप से विद्यमान है, और चरन्नी लोरिक चंद्रा के प्रेम प्रसंगों पर आधारित प्रेम गाथा है जो आगे चलकर विशेष लोकप्रिय हुई। दोनों ही गाथाओं में लोरिक की सती साध्वी पत्नी मैना या मंजरी के उज्ज्वल चरित्र एवं सतीत्व का आख्यान भी किसी न किसी रूप में मिलता है। पुनर्नवा में भी चनैनी, लोरकी और मैना माजरदेई के आधार पर लोक कथा के तीन रूपों प्रेम गाथा, वीर गाथा और सती गाथा का स्वीकार किया गया है, पर प्रमुखता प्रेम गाथा और सती गाथा के चरित्र रूपों को ही दिखाई पड़ती है। लोरिक की प्रेम का चंद्रा चनव्रा के चरित्र निर्माण में पश्चिमी अभ्रंश के चरित्र काव्य और सूफी प्रेमाख्यान के चरित्र नायिकाओं के साथ ही महाभारत की द्रौपदी और सूर्य की राधा से भी सहायता ली गई है। इसी प्रकार मैना के चारित्रिक विकास में सीता, सावित्री और पार्वती जैसी सती नारियों और कर्ण ऋषि के आश्रम में पलने वाले ऋषि कन्या शकुंतला की भाव प्रतिमा की सहज प्रेरणा भी दिखाई पड़ती है। बौद्ध सन्यासी और हिंदू गृहस्थ देवरात के आश्रम में पलने वाली मैना को विदाई के समय देवरात की प्रतिवत्सलता कर्ण ऋषि की मार्मिक वेदना की स्मृति ताजा कर देती है। इसी प्रकार देवरात की सती पत्नी शर्मिष्ठा और उसकी भाव प्रतिमा गणिका मंजुला, जो मंजुलिमा की भी भाव प्रतिमा है, कि एक रूपता वयस्व वस्नुतन एक कुरुक्षेत्र में रुक्मिणी और राधा के मार्मिक भेंट की स्मृति ताजा कर देती है। जहाँ पत्नी और प्रेमिका ऐसे मिलती है नोटेड कामा, जैसे बहुत दननी की बिछुरी एक बाप की बेटी इनोटेड कामन सुरसागर सार। सूरदास ने वहाँ सकिया और पकिया परगिया को एक रूप और अभिन्न बना दिया है, और पुनर्नवा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बाप की दो बेटियों को सूर्य के भाव लोक से उतार कर व्यवहारिक जगत में मैना और चंद्रा के माध्यम से प्रेम के दो छोरों को एकाकार करते हुए आधुनिक कथा साहित्य की रचनाशीलता की अपेक्षा में वैश्या, विधवा और सतवंती नारी रूपों की विविध सामाजिक समस्याओं का समाहार करने का प्रयास किया है। चंद्रा के प्रेम के माध्यम से उन्होंने यह स्थापित करने की चेष्टा की है कि स्वकीया और परकीया प्रेम के बीच एक निश्चितता कोई विभाजक रेखा नहीं, बल्कि दोनों का मौलिक प्रतिमान है। पति पत्नी के वैधानिक संबंधों को लेकर चंद्रा के भूतपूर्व नपुंसक पति श्रीचंद्र द्वारा लगाए गए अभियोग का जनतांत्रिक समाधान लेखक की आधुनिकता और प्रगतिशीलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। गोपियों के प्रेम को लोकवादी प्रमाणित करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में किसी कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसके पिता द्वारा कराया गया विवाह एक सामाजिक बलात्कार है। यह धर्म सम्मत विवाह नहीं, बल्कि समाज को धोखा देने वाला मिथ्याचार है। किसी समय चंद्रा से घृणा करने वाले हलद्वीप के निवासियों के स्वयंभू संरक्षक सुमेरका का श्री चंद्र पर प्रति अभियोग लगाते हुए आचार्य पुरगोभिल के सामने एक सदैव वकील की तरह चंद्रा का पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, नोटेड कामा, श्रीचंद्र को मैं मिथ्याचारी समझता हूँ, जिसने समाज को धोखा दिया है। आप मुझे शूल विद्ध भी कर दें तो भी मैं इस मिथ्याचार का प्रतिवाद करूंगा। पुराण ऋषियों ने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, परंतु सत्य सत्य है, बलात्कार बलात्कार, मुझे इतना ही कहना है, नोटेड कामा। इस व्यवहार के प्राडव्याक महान धर्मशास्त्री आचार्य पुरगोभिल अपना निष्पक्ष न्याय और धर्म प्रेम के कारण जनता में सम्मिलित थे और सुमेर काका खरी बातों और उनके फक्कड़ाना स्वभाव का आदर करते थे। यही कारण है कि सुमेर काका की ईमानदारी और न्यायप्रियता के चलते आचार्य पाद्य ने स्वयं प्राश्चिक नियुक्त किया। इस प्रकार के व्यवहारों में मध्य प्रदेश के पाडविवाक नियुक्त करने की प्रथा थी, जो कि स्थायी धर्माधिकारी होता था और मथुरा, उज्जैनी आदि शक प्रभावित क्षेत्रों में परामर्शदाता को प्राश्चिक कहते थे, जिसकी नियुक्ति अस्थायी हुआ करती थी। पितामह और शुक्राचार्य जैसे धर्मज्ञों के निर्देश को ध्यान में रखते हुए तथा श्रुतियों, स्मृतियों एवं न्यायशास्त्र के अन्य ग्रंथों का आकलन करते हुए आचार्य पूर्व गोविल मथुरा और उज्जैनी की विद्वत सभाओं में दिए गए निर्णयों को भी अवगत हो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि इस जटिल व्यवहार का निदर्शन अधिक दर्शकों और यवनों द्वारा प्रभावित आर्यजनों के समाज में मिल सकता है, जिसका प्रभाव आज के समाज पर भी देखा जा सकता है। अतः बदलती हुई नई परिस्थितियों में पुरानी न्याय नीतियों के संस्कार और नई मान्यताओं के स्वीकार से ही सामाजिक संतुलन कायम किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कामा जिसे आज अधर्म समझा जा रहा है, वही किसी दिन लोकमानस की कल्पना से उठकर व्यवहार की दुनिया में आ जाएगा। अगर निरंतर व्यवस्थाओं का संस्कार और परिवर्तन नहीं होता रहेगा तो एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगे ही, अपने साथ धर्म को भी तोड़ देंगी। पुनर्नवा यदि लोकमानस को नियंत्रित करने वाली अनेक प्रेरक शक्ति खो बैठता है तो वह रूढ़ मान्यताओं और मिथ्याचारों के रूप में निरर्थक हो जाएगा। पर किया प्रेम के शास्त्रों का बराबर को भाजन बनना पड़ा है। प्रेम मनुष्य का स्वभाव है, उसकी उन्मुक्त और स्वच्छंद प्रकृति मनुष्य की दुर्बलता हो सकती है, किंतु उसे मनुष्य की अनैतिक वृत्ति अथवा बाह्य प्रभाव मानकर उसके विरुद्ध वर्जन मूलक नीति निर्धारित करना थोत नैतिकतावाद का परिचायक है, और इससे प्रेम वृत्ति वर्जनशीलता के विरुद्ध एक सामाजिक विद्रोह का रूप धारण कर लेती है। आज के समाज में प्रेम की इस बढ़ती हुई स्वच्छंद प्रवृत्ति के प्रति नकारवादी रवैया न अपनाकर द्विवेदी जी उसे लोकवादी भावभूमि से देखने की सिफारिश करते हैं। राजप्रतिनिधि आमात्य बुरंदर को संबोधित करते हुए आचार्य पुरगोभिल समझाते हैं कि नोटेड कामा, अगर सचमुच किसी की पुत्री सामाजिक विधि निषेध का उल्लंघन करके प्रेम निभाना चाहे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, परंतु लोग चाहे या ना चाहे सुकुमारमती की कर्मठ बालिकाओं के वैचारिक सम्मान को कार्य रूप में परिणत करने की इच्छा कभी न कभी प्रबल रूप धारण कर सकती है। विचारों और कल्पना की दुनिया में जो बात मान्य होती है उसे व्यवहार की दुनिया में स्थान पाने में देर लगती है, पर वह पाती अवश्य है। पुनर्नवा जिस समय आमात्य पुरंदर और आचार्य पुरगोविल चंद्रा के व्यवहार को लेकर गंभीर विचार विमर्श में खोए हुए थे, उसी समय बाहर आभीर महिलाओं की मंडली में से एक युवती कामल कंठ से अकेले या भ्रंश में लोग गीत गाने लगती है, जिसका अर्थ है इनोटेड कामा, वर्षास्त और पुरजनों का वर्जना जल जाए, जो प्रिय मिलन का निवारण करता है और साजन को मार डालता है। पुनर्नवा इनोटेड कामा आचार्य पुरगोविल को इस जटिल व्यवहार की गुत्थी सुलझाने के लिए हलद्वीप के लोक जीवन से भी एक पक्की नजीर मिल जाती है, और वे मुस्कुराते हुए आमात्य पुरंदर की ओर मुखावितिब होते हैं। सुन लिया धर्मावतार, हर गांव में हर हाट में हर गली में ये गाने सुनाई देंगे। आज आप इसे केवल भाव लोक का विद्रोह का टाल सकते हैं, पर लोकमानस में शुष्क धर्माचार और रूढ़ मान्यताओं के प्रति यह भाव लोक का विद्रोह किसी दिन वस्तु जगत के विद्रोह का रूप ले सकता है। जानते हैं धर्मावतार, आदि मनु धर्म के लिए हृदय पक्ष को ध्यान में रखने पर भी बल दिया था। हृदय नाभ्यतुनुज्ञातः कहा था। पुराण ऋषि मान जानते हैं थे कि शुष्काचार मात्र धर्म नहीं है। इनोटेड कामा अंत पुनर्नवा इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रक्षा के लिए धर्म की रक्षा के लिए निरंतर विचार करते रहने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। जब वे पोथियों में उलझते हैं, शास्त्रों से टकराते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि वे अपने संस्कारों से लड़ते हैं, अपने को ही तोड़ते हैं, और उनका वह तोड़ना कुछ नया जोड़ने के लिए होता है। इसी अर्थ में इतिहास निर्माता हैं, सर्जक हैं, निरर्थक खंडन मंडन की प्रवृत्ति से सर्वथा भिन्न। उनका आत्मसंघर्ष रचनात्मक सृजन की प्रेरक शक्ति है। केवल प्रेम में ही अपने को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ दिया जा सकता है। आत्मदान का यह स्वर उनके हर उपन्यास की तरह पुनर्नवा में भी मुखर हुआ है। विंध्याचल के सिद्ध बाबा चंद्रा को ही गुरु मंत्र देते हैं, यूनाइटेड कामा, अपने लिए कुछ बटोरना नहीं, सब कुछ निशेष भाव से निचोड़ कर देती रहना। यूनाइटेड कामा बन यही संदेश शर्मिष्ठा की भाव प्रतिमा मंजुला देवरात को देती है। यूनाइटेड कामा, तुम पाना चाहती हो, कैसे प्रभोगे प्रभो, भगवान ने तुम्हें ग्रहिता भाव दिया ही नहीं है। तुम्हारा स्वभाव देना है, लुटाना है, अपने को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर महाज्ञान के चरणों में उलेड़ देना है। इनोटेड कामबंद इस प्रकार देवराज की सामाजिक सेवा से अत्यंत प्रभावित परम विनोदी मानदव्य शर्मा बार बार इस मंत्र को सीखने का अनुरोध करते हैं। इनोटेड काम, आज मैंने देखा है कि सेवा में अपने आप को खपा देने में क्या आनंद मिलता है। और भी सिखाओ आर्य, और भी सिखाओ कि कैसे अपने आप को उलीझ कर निशेष भाव से दिया जा सकता है। इनोटेड कामबंद तो और तो और चंद्रमौली भी इस मंत्र के प्रभाव से अछूते नहीं प्रतीत होते। गोपाल आर्यक और चंद्रा के उच्छल प्रेम का तरल आवे इतना जीवंत और एक निष्ठ है कि सम्राट समुद्रगुप्त जिनके एकांत निर्णय से वह अभिशप्त हो उठा था, अंततः यह स्वीकार करते हैं कि चंद्रा को समझने में उनसे कहीं चूक हुई है। संभवतः उसकी सच्चाई, सरलता और तेजस्विता को निर्लजता मान लेने की भूल हुई है। वस्तुतः चंद्रा के प्रेम में यदि शारीरिक बुभुक्षा का उद्गाम वेद है तो उससे भी कहीं ज्यादा अकुंठ सेवा और त्याग की उन्मुक्त जीवंतता है। इनोटेड कामा, संसार में आज तक किसी स्त्री ने इतना साहसिक प्रेम और इतनी अकुंठ निश्चल सेवा की है। कितनी बार उसने आर्यक के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया है, कितनी बार उसने प्राण ढाल कर आर्यक में संजीवनी शक्ति भरी है, कितनी बार उसने सामाजिक विधि विधानों को तलवे से रौंद कर सत्य को स्वीकार किया है। इनोटेड कामा, लोक प्रवादों से भयभीत आर्यक की अपेक्षा ने उसके प्रेम को और उग्र बना दिया है। उसने आर्यक की ही सेवा की है, ऐसा नहीं, आर्यक के अभाव में मृणाल अगर जीवित रह सकी तो उसका कारण चंद्रा का निश्चल सेवा और उसका पारिवारिक प्रेम है। पत्नी के जिस अधिकार भावना से वह आर्यक के घर को अपना लेती है, उसके पुत्र की यशोदा और पत्नी की बड़ी बहन का दायित्व संभाल लेती है, उससे मृणाल उसकी दासी बन जाती है और श्यामन बड़ी अम्मा का होकर रह जाता है। जिस सहजता से वह मृणाल उसके पुत्र के प्रति आर्यक के प्रेम और वात्सल्य की क्षतिपूर्ति करती है, उससे लगता है कि आर्यक के प्रति उसकी छद्दाम यौवन लालसा उसके अगाध वात्सल्य की पूर्व पीठिका थी। वह सच्चे अर्थों में गोपाल आर्यक की महिष मर्दिनी सहधर्मिणी और मृणाल के लिए सिंहवाहिनी का प्रतीक विग्रह है। गोपाल आर्यक के प्रेम के लिए चंद्रा ने गवा जो त्याग किया है, वह संसार की शायद कोई कुलांगना कर सकी हो। वह श्रद्धेय नहीं नमस्य है, गणिका होकर भी जो साहस मंजुला नहीं कर सकी, वह साहस कुलांगना होकर चंद्रा कर बैठी। इस श्रद्धाम प्रेम का निदर्शन खोजना कठिन है, उसके प्रेम में पाने का नहीं लुटाने का वेग है। इनोडर काम बन किसी समय चंद्रा को उल्टा और व्यभिचारणी समझकर अपनी लाठी से उसका सिर फोड़ देने का मनसूबा बनाने वाले बुजुर्गवार सुमेर काका जब हल्दीव के सारे निवासियों की ओर से घोषित करते हैं कि इनोडर कामा चंद्रा जैसी खरी तेजस्विनी सतीनारी संसार में दुर्लभ है। इनोडर काम बन तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह चंद्रा का चरित्र का निश्चल प्रमाण पत्र है। लोक प्रमादों से घिरी हुई बेटी को अभियोग मुक्त करने की लोक मान्यता है। शुद्धता और संकीर्णता से ग्रस्त रूढ़िवादी शास्त्र को लोक की चुनौती है और लेखक द्वारा चंद्रा के प्रेम की यह लोकवादी व्याख्या है। चंद्रा जब गोपाल आर्य को गंवार और कायर कहती है, उसके सतेपन को क्रोध देती है तो वह घबरा जाता है, कभी पैर धो देती है तो उसे बिजली मार जाती है। उसके इसी भोले पर वह मुग्ध है, इसीलिए चंद्रा की दृष्टि में आर्यक पूरा बमभोला और नादान बच्चा है। लोग क्या कहेंगे, मृणाल क्या सोचेगी कि लोग प्रवाद से अपने को मुक्त न कर पाने के कारण ही वह चंद्रा के निश्चल आत्मीयता और प्रेम रस में सराबोर उसके कुवाचियों की अपूर्व मिठास का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरी तरफ चंद्रा अकुंठ निश्चल और खरी है, मृणाल के सामने भी वह बेझिझक उसके छद्दाम प्रेम की दुर्बलता को अभिव्यक्त कर देती है। वह मन का ठंडा है, मैं तन की गर्म हूँ। पुरुष को मन का गर्म होना चाहिए, जिसका मन गर्म होता है वह बहुत से गर्म तनों को ठंडा कर सकता है, जिसका मन गर्म नहीं होता वह कितनी भी तलवार भांज ले स्त्री के लिए कायर ही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चंद्रा अपने प्रेम की शक्ति और सीमा दोनों से बखूबी परिचित है और उसकी अनुभूति और अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदार भी। इसके साथ ही आर्य की दुर्बलता को जितना वह पहचानती है उतना आर्यक भी नहीं पहचानते। अब कोई यह कहे कि इनोटेड कामा बंद नारी के गुण पुरुष में आ जाते हैं तो वह देवता बन जाती है और पुरुष के गुण स्त्री में आ जाए तो वह उल्टा बन जाती है। इनोटेड कामा बंद तो चंद्रा के लिए यह उलटवासी ही प्रमाणित होगी, क्योंकि उसके ज्ञान का स्रोत मनुष्य है, पोथी नहीं। सारे लोक प्रवादों को दरकिनार कर चंद्रा जितने दृढ़ता के साथ अपने असंवैधानिक विवाह को नकारती है, उतने ही दृढ़ता के साथ अपने प्रेम के प्रति अड़िग रूप से आस्थावान है। इनोटेड कामा मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे पिता ने एक ऐसे मनुष्य रूपधारी पशु से कर दिया है जो पुरुष है ही नहीं, मैं उसे पति नहीं मान सकती। हल्द्वीप के मुंह में कालिक लगती है तो 100 बार लगा करें। जो समाज इस प्रकार के विवाह का स्वीकृति देता है वह अपने मुख में कालिक पहले ही पोत लेता है। मैंने आर्यक को ही अपना पति माना था, वह मेरा था और रहेगा। इनोटेड कामा बंद असत्य के नकार और सत्य के स्वीकार का यह अकुंठ साहस कहीं न कहीं ब्याहो लाख धरो दस कुबरी अंत ही काना हमारो कि जमीन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिसमें नकार के अहंकार से ज्यादा एक निष्ठ प्रेम का अधिकार भरा दर्प है। महाभारत की रुक्मिणी और सुभद्रा चंद्रा से ज्यादा सौभाग्यशालिनी है। उनकी और चंद्रा के बीच इतिहास और लोकगाथा की एक लंबी दूरी है। अपहरण की शिष्टता और उड़ार की अशिष्टता की दूरी है, शास्त्र और लोक की दूरी है, किंतु इन सारी दूरियों का अतिक्रमण कर लेखक ने उन्हें सौधर्मिणी की ऐसी जमीन पर स्थापित किया है जहाँ वह हठात अपहरण करने वाले लंपट सामंती विलासिता की छाया से काफी दूर पड़ती है। इस अर्थ में वह बाण भट्ट की भट्टनी और महामाया से ज्यादा सौभाग्यशाली है। आवश्यकता पड़ने पर वह पुरुष सिंह के बिना भी महिषवर्धन की शक्ति से संपन्न है, कुंठा से मुक्त होकर उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। पुनर्नामा के अनुसार गोपाल आर्यक हल्द्वीप के बुद्धगोप के पुत्र हैं, जिनके पूर्वज शुंग राजाओं की सेना के साथ हल्द्वीप में आकर बस गए थे। उन्हें नंदगोप का वंशधर बताया गया है। यह एक प्रकार से उस ऐतिहासिक आधार का रचनात्मक उपयोग है जिसके अनुसार प्रथम शताब्दी के आसपास भारत के पश्चिमी देशों, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्सों, गुजरात तथा उसके आसपास के भूभाग पर आभीरों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और द्वारिकापुरी के यादव गणराज को जीतकर धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ते गए थे। महाभारत में गोपगणों का उल्लेख मिलता है तथा शुंगवंशी राजाओं के समय मध्य भारत के में उनके बस जाने के प्रमाणिक माना जाता है। लोकगाथा के लौरिक उम्रचिकटिक के गोपपुत्र आर्यक से अभिन्न मानकर पुनर्नवा में गोपाल आर्यक के रूप में स्वीकार किया गया है और गोपाल आर्यक गोवाल आरिक ग्वालारिक लौरिक के रूप में भाषा वैज्ञानिक संगति बैठा ली गई है। इसी प्रकार हरदी अथवा हरदुई को हल्द्वीप में संकल्पित कर लिया गया है। इसे भाषा विकास के प्रक्रिया में संगत नहीं कहा जा सकता। वैसे हल्द्वीप की ऐतिहासिक संभावना की तलाश में वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में उपन्यासकार ने उसे गंगा और महासरयू के तट पर स्थित बताते हुए कम से कम बरसात में उसके द्वीप बन जाने के अनुमान द्वारा हल्द्वीप को ऐतिहासिक संभावना को विशेषणीय बनाने का प्रयास किया है। मिर्जापुर के अंचलों में गाई जाने वाली लोकगाथा के आधार पर संकलित लुरिकायन के अनुसार कंतित इतिहास में कांतिपुरी भर राजाओं की राजधानी थी, लेकिन कहीं कहीं लोरी को भी कांतित का सरदार कहा गया है। उसमें यह भी उल्लेख मिलता है कि चनवा को उड़ार कर लोरी सीधे हरदी पहुंचा और वहां के राजा के यहाँ कुछ दिन नौकरी करता है। हरेरा परेरवा से उसके युद्ध की भी चर्चा आई है, जिसमें हरदी का राजा लोरी की वीरता से प्रभावित होता है। लोक गाथा के इन तत्वों ने 14वीं शताब्दी में भार शिवनागों कुषाणों आभीरों और शकुद आदि के अस्तित्व एवं उनके प्रभाव के ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर हल्द्वीप और मथुरा के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है। पुनर्नवा में उपन्यासकार ने नागवंशी यज्ञसन को हल्द्वीप का राजा बताते हुए इस बात का भी उल्लेख किया है कि जब कांतिपुर के महाराजा धीराज वीरसेन के सेनापति प्रवरसेन को काशी में नवम अश्वमेघ यज्ञ के आयोजन का भार सौंपा गया तो अपने पिछले अनुभवों के आधार पर उन्होंने साकेत से पाटलिपुत्र तक कुषाण राजाओं के अवशिष्ट प्रभाव को पूरी तरह मिटा डालने का निश्चय किया। यज्ञसेन कांतिपुरी के राजा वीरसेन की ओर से हल्द्वीप का शासन करते थे। आवीरों के व्यापक प्रभाव को देखते हुए यज्ञसेन ने सत्ता में बने रहने के लिए उनसे मैत्री संबंध बनाए रखना आवश्यक समझा था, किंतु उनके पुत्र रुद्रसेन की गलत नीतियों के कारण संबंध बरकरार न रह सके और आपसी संघर्ष अनिवार्य हो उठा। समुद्रगुप्त की सेना की सहायता से गोपाल आर्यक ने रुद्रसेन को पराजित कर हल्द्वीप की राजसत्ता को हस्तगत कर लिया। इतिहास में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कुषाण वंश के प्रभाव और गुप्त वंश के उदय के बीच उत्तरी भारत के विशाल भूभाग पर भारशिव नागों का प्रबल आधिपत्य था और विदिशा पद्मावती कांतिपुरी तथा मथुरा उनके प्रमुख सत्ता केंद्र थे। पुनर्नवा में हल्द्वीप के अतिरिक्त मथुरा और उज्जैन मुख्यतः ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाओं के केंद्र हैं। इतिहास द्वारा यह प्रमाणित है कि मथुरा पर कुषाण राजाओं का शासन था और भार शिवनागों ने उन्हें पराजित कर वहां अपना आधिपत्य कायम किया, किंतु पुनर्नवा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उल्लेख किया है कि आभीर राजा रुद्रसेन ने वहां से भार शिवनागों को मार भगाया और उसके सैनिकों ने लहुरावीर के जय जयकार करते हुए कुषाण राजा दिमित को इस प्रकार निस्तराभूत कर दिया जैसे प्रचंड आदि पीड़ों को उखाड़ फेंकती है। यहाँ यह उलझन पैदा होती है कि आभीर सामंत भद्रसेन ने एक साथ ही भार शिवनागों और कुषाण शासक दिमित को कैसे मार भगाया, जबकि इतिहास में दिमित नामक किसी कुषाण राजा को लेख नहीं मिलता। समुद्रगुप्त के संबंध में किए गए विस्तृत दावों की प्रामाणिकता एवं स्वयं इतिहासकारों की दृष्टि में संदिग्ध है, इसलिए कुषाणों के साथ उनके संबंध के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना सच है कि इस समय तक ये संबंध काफी कमजोर हो चुके थे। समुद्रगुप्त की आकांक्षा एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करने की थी जिसका नियंत्रण गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र से किया जा सके। दुर्भाग्यवश इस समय का इतिहास जानने के लिए एकमात्र प्रमाणिक स्रोत इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया समुद्रगुप्त का विस्तृत प्रशस्ति पत्र है, जिसमें विजित राजाओं के नामों और स्थानों की सूची दी गई है। उसमें सेनापतियों और छोटे मोटे सामंतों का उल्लेख नहीं है। प्रशस्ति पत्र होने के नाते इसकी सूचनाएं कितनी प्रमाणिक है कहना कठिन है, पर ऐतिहासिक अनिश्चितता की स्थिति में गोपाल आर्यक के समुद्रगुप्त का महाबलाधिकृत और नर्म सखा होने भद्रसेन द्वारा दिमित नाम किसी कुशाण राजा को परास्त करने, दिमित के पुत्र धर्मघोष द्वारा 10 वर्ष के भीतर ही मथुरा से भद्रसेन की आबेर सत्ता का समाप्त कर देने अथवा भद्रसेन द्वारा बाहर शिवनागों को मथुरा से हटा देने की ऐतिहासिक संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुनर्नवा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त को प्रयाग और साकेत के पीछे से छोटे राज्य का शासक बताते हुए समुद्रगुप्त के ननिहाल में रहने का भी उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त का लिच्छवी राजकुमारी से विवाह करना ऐतिहासिक सत्य है, इसीलिए समुद्रगुप्त के ननिहाल में रहने की संभावना भी बनती है। चंद्रगुप्त प्रयाग और साकेत के बीच किसी छोटे राज्य का शासक था, इसे संदिग्ध मानते हुए कतिपय आलोचकों ने इसे उपन्यासकार की कल्पना माना है। वैसे तो गुप्तों के उद्भव को लेकर इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके राज्य करने की बात निराधार नहीं है। यह सच है कि गुप्त वंश की नींव बिहार में श्रीगुप्त ने डाली थी, किंतु इससे यह कैसे माना जा सकता है कि चंद्रगुप्त का शासन पूर्वी उत्तर प्रदेश पर था ही नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार उमिला थापर ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों साकेत और प्रयाग पर राज किया, भारत का इतिहास। इसी क्रम में उन्होंने यह भी लिखा उल्लेख किया है कि लिच्छवी कन्या से विवाह करने के कारण चंद्रगुप्त ने राजनीतिक प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता प्राप्त की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 चंद्रलेख और पुनर्नवा दोनों ही उपन्यासों में समुद्रगुप्त की उत्खात प्रतिरोपण नीति की चर्चा की है, जिसके अनुसार उसने अपने पिता चंद्रगुप्त की नीतियों से अलग हटकर क्षत्रिय राजाओं से मैत्री संबंध स्थापित करते हुए मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। द्विवेदी जी लिखते हैं कि जिसे उखाड़ा उसी को फिर से रोप दिया। समुद्रगुप्त की यह नीति ही भावी गुप्त साम्राज्य की सफलता की नींव थी। जिस राजा का राज्य जीता उसे ही अपना अधीनस्थ राजा बना दिया। पुनर्नवा। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि हलदीप ही उस नीति का अपवाद क्यों है, जहां उखाड़ा भारशिव रुद्रसेन को और रोपा भागवत गोपाल आर्य को। क्या इसलिए तो नहीं कि समुद्रगुप्त स्वयं भागवत धर्मी थे और गोपाल आर्यक भी, अथवा इसलिए कि भारशिव नागवों ने उनके साम्राज्य विस्तार में प्रबल प्रतिरोध उपस्थित किया था और उन्हें भी अपने साम्राज्य के लिए स्थायी खतरा मानते थे। बात जो भी हो, लेकिन द्विवेदी जी समुद्रगुप्त की इस नीति के परम प्रशंसक हैं। संभवतः इसे वे आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप के बृहत्तर राजनीतिक संदर्भों में देखते हैं, और इसलिए यह नीति उन्हें संपूर्ण राष्ट्र को एकता और अखंडता के शासन सूत्र में बांधने के कारण न्याय संगत प्रतीत होती है। लेकिन गुप्त साम्राज्य को केवल भौगोलिक सीमाओं के आधार पर मौर्य साम्राज्य के समानांतर देखने का भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि शासन की एकसूत्रता की दृष्टि से मौर्यों का केंद्रीय नियंत्रण काफी प्रभावशाली था। हाँ, उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने उससे ज्यादा पुष्ट आधार प्रदान किया। समुद्रगुप्त निश्चय ही कला संगीत और साहित्य का प्रेमी तथा उदार ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। उसके सिक्कों पर वीणा वादन की उसकी मुद्रा उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। भारतीय इतिहास में यह एक प्रकार से धार्मिक सांस्कृतिक और कलात्मक संश्रव का काल था। धर्म की नई नई व्याख्याओं और नए धर्म ग्रंथों के निर्माण ने ब्राह्मण धर्म को लचीला और उदार बनाया। ब्राह्मण धर्म से कई वैदिक देवता लुप्त हो गए और कुछ ने अतिरिक्त विशेषताओं के साथ पुनर्जन्म ग्रहण किया। विष्णु ऐसे ही प्रभावशाली देवता के रूप में उभर रहे थे, जिन्होंने आगे चलकर ईश्वरत्व प्राप्त किया। अवतारवाद की प्रतिष्ठा हुई और लोक जीवन में भी छोटे मोटे साहसिक कार्य करने वाले स्त्रियों और पुरुषों को देवी देवताओं का अवतार मान लेने की प्रवृत्ति फैलने लगी। लोरकी, लहुरावीर, मैना महासते आदि लोक कथाओं और दंत कथाओं से मनुष्य में नया विश्वास प्राप्त किया। इस समय बौद्धों, शैवों और भागवतों के विभिन्न आचार विचार तथा साधना आराधना की पद्धतियां पारंपरिक ब्राह्मण धर्म की लचीली मान्यताओं से संश्लिष्ट एक ऐसे भारतीय समाज का निर्माण कर रही थी जिसे आगे चलकर हिंदू समाज के नाम से जाना गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन संभावनाओं को ऐतिहासिक तथ्यों से कम महत्वपूर्ण नहीं मानते और अपने वर्तमान समाज में अवशिष्ट रह गए सांस्कृतिक परंपरा के स्मृति चिन्हों के सहारे भी इतिहास तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हलदीप के इतिहास निर्माण में निश्चय ही उनके सामने काशी के दशाश्वमेघ और लहुरावीर के स्मृति चिन्ह भी रहे होंगे। ऐसे स्मृति संकेत हरिप्रसाद द्विवेदी के लिए सदैव विपुल संभावनाओं से भरे होते हैं। इसी प्रकार मथुरा के इतिहास निर्माण में ऐतिहासिक तथ्यों के अतिरिक्त वहाँ की सांस्कृतिक परंपरा और लोक परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है। पुनर्नवा में द्विवेदी जी लिखते हैं, ये नोटेड कामा, यह मथुरा तीनों लोकों से नारी है। इसमें नई नई बातें रोज ही देखने को मिलती रहती हैं। कुषाण राजाओं ने यहाँ पंचध्यानी बुद्धों की उपासना चलाई। उन्हें धकेल कर भार शिव नाग राजा बन गए तो उन्होंने पंचमुखी शिव की उपासना चला दी। इनको अभिराजा भद्रसेन ने धकेला और चतुर्व्यूह में एक और विष्णु वीर जोड़कर पांच विष्णु वीरों की पूजा चला दी। इन्वर्टेड कामा बंद। चतुर्व्यूह में शंकरषण, बलराम, वासुदेव, कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चार प्रसिद्ध विष्णु कुल के वीर हैं, जिनमें कृष्ण के छोटे पुत्र श्याम को लौरा वीर के रूप में शामिल कर पंच विष्णु वीरों की उपासना का प्रचलन हुआ। हल्द्वीप में लौरा वीर की उपासना करने वाले गोपाल आर्य को मथुरा में लौरा वीर के रूप में देखने की चर्चा पाण्डुलिपियों ने की है। मथुरा के वृद्ध ब्राह्मण धार्मिक पुनरुत्थान की आशा से करते हैं कि इनुष्कामा, इधर मथुरा में यह हाल है कि मलेच्छ राजा स्वयं प्रजा का शील नष्ट करने पर तुला है। भगवान वासुदेव की लीला भूमि ने जाने कब तक इस प्रकार के अनाचार का अखाड़ा बनी रहेगी। ऐसा लगता है कि गोपाल आर्य के रूप में वे फिर इस पवित्र लीला भूमि की सुधि लेने आ रहे हैं। इनुष्कामा बन पुनर्नवा। इस प्रकार अवतारवाद के सारे मथुरा और उज्जैनी के उद्धार के प्रति मथुरा के प्राकृत जनों की ओर से वृद्ध ब्राह्मण आशान्वित दिखाई पड़ते हैं। चंडसेन को मथुरा के नागरिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो उज्जैनी और मथुरा दोनों ही राजकुलों के भृतव्य हैं और उज्जैनी के राजा राज श्यालक भानुदत्त के चलते मथुरा में रहते हैं। गोपाल आर्य द्वारा उज्जैनी के शक राजा पालक की हत्या करने के बाद उत्खात प्रतिरोपण की नीति का पालन करते हुए इन्हें ही उज्जैनी में आरोपित किया गया है। चंडसेन का संबंध पुरुषपुर से बताया गया है, जिसे अनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता। इतिहास से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कुषाण राज्य दक्षिण में सांची तक और पूर्व में बनारस तक था और मथुरा में की स्थिति दूसरी राजधानी जैसी थी। वास्तविक राजधानी पुरुषपुर थी। शकों और कुषाणों के रक्त संबंध को लेकर इतिहास में एक अनिश्चितता भी स्थिति दिखाई पड़ती है। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क का चीक बिले के उन दो शासकों से क्या संबंध था जिनके बाद तीसरे शासक के रूप में सिंहासन रूढ़ हुआ था, यह भी इतिहास के निश्चित नहीं है। इतिहास की इस अनिश्चयात्मक स्थिति को देखते हुए पुनर्नवा में पालक के सौतेले भाई उपवदांत को मथुरा का शासक बताना और चंडसेन को शक और कुषाण दोनों कुलों के पितृव्य के रूप में स्वीकार करना एक प्रकार से प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों का रचनात्मक उपयोग है, जिसे असंगत नहीं कहा जा सकता। उज्जैनी घटनाओं का मूल आधार में चकटिक है, जिसका बहुत समय विवादास्पद है। अनेक विद्वानों ने शूद्र को कालिदास का पूर्ववर्ती सिद्ध करने का प्रयास किया, तो कुछ के अनुसार वे कालिदास का समकालीन भी बताए गए हैं। डॉक्टर रांगे राघव ने मृचकटिक का समय ईस्वी पूर्व या एक ईस्वी के बीच निर्धारित किया है और इसके आसपास उज्जैनी में पालक नामक राजा का उल्लेख आई एस त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में किया है, जिसके अनुसार पालक चंड प्रद्योत का पुत्र था, जिसके भाई गोपाल के पुत्र आर्यक ने सिंहासन से अभ्यस्त किया था। इसी ऐतिहासिक आधार पर मृचकटिक की सहायता से पुनर्नवा में उज्जैनी के इतिहास का पुनर्निर्माण किया गया है, जो ऐतिहासिक कालखंड की दृष्टि से असंगत अवश्य है और पुनर्नवा के वस्तुगत आग्रह के चलते उपन्यासकार ने उसे बहुत महत्व नहीं दिया है। पुनर्नवा के आर्यक, पालक, वीरक, शर्विलक, मांदी, मदनिका, चारुदत्त, वसंत सेना, दूता आदि मृचकटिक से लिए गए हैं। इस समय समाज बौद्ध और व्यापारियों का वर्चस्व था, पूर्ण व्यवस्था से स्थित थी, दास प्रथा दास दासियों के क्रय विक्रय के रूप में विद्यमान थी, कुलवधियों की तरह ही गणगायें सम्मानित थी और चार दत्त जैसे ब्राह्मण भी श्रेष्ठ कहे जाते थे। पुनर्नवा में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ढंग से इनका उपयोग किया है, किंतु मृचकटिक की शिथिल वर्ण व्यवस्था यहाँ अपने संशोधित परिवर्तित रूप में स्वीकार की गई है। भाषक उपन्यासकारों ने अपने पात्रों के संस्कारों को तोड़ने और उनमें विवेक सम्मत मानवीय संबंध विकसित करने का प्रयास किया है। समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार निरंतर संस्कार करते रहने की आवश्यकता को जोर देकर रेखांकित करना ही पुनर्नवा की रचनात्मकता का संकल्प है। अनामदास का पोथा, तप नहीं केवल जीवन सत्य। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का अंतिम उपन्यास अनामदास का पोथा आधुनिक तत्वज्ञानी मनुष्य केंद्रित सामाजिक चिंतन की रचनात्मक परिणति और समकालीन संदर्भों में अतीत के मनुष्य को उसकी संपूर्णता में पुनर्निर्मित करने के महान संकल्प का प्रमाणिक दस्तावेज है। इसमें अतीत की समकालीनता और शास्त्र के लोकोन्मुखता के रचनात्मक तनाव से भारतीय उपन्यास की परिकल्पना को मूर्तमान किया गया है, जिसके मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं कि पुराने मूल्यों को उसके चरमराते हुए ढांचे के भीतर नहीं खोजा जा सकता। सृजनात्मक मूल्यों की तलाश में उपन्यासकार पहले तो उपनिषदकालीन ऋषियों के तत्वज्ञान को प्रतिपादित करने वाले मूल्यों का निर्माण करता है और फिर उनके भीतर ही उन्हें तोड़ने के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में वैयक्तिक ज्ञान साधना को लोक जीवन की निर्वैयक्तिक जमीन पर ज्यास्ता परखता वैष्णानर साधना को विश्व मानवतावाद के बृहत्तर जीवन मूल्यों से जोड़ने का प्रयास करता है। परंपरा के ऋण शब्दों को नया अर्थ देकर उपन्यासकार उसमें आज के मनुष्य के लिए प्रासंगिक संभावनाओं की तलाश करता है। उपन्यास की भूमिका अब मैं नाच्य बहुत गोपाल कई दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण है। वह न केवल उपन्यास की रचना प्रक्रिया और उसके शिल्प विधि को निर्दिष्ट करती है, बल्कि वह उपन्यासकार के व्यक्तित्व और जीवन दर्शन का आईना भी है। इस अंतिम उपन्यास में रामदास के पोथा के बहाने जैसे वह अपने ही जीवन का सिंहावलोकन कर रहे हैं। एंड्रॉइड कामा पीछे की ओर देखता हूँ विराट रिक्तता, जो कुछ करता रहा हूँ वह क्या सचमुच किसी काम का था? अपनी सीमाओं त्रुटियों और छाइयों को छिपाकर अपने को कुछ ढंग से दिखाना कि मैं सचमुच कुछ हूँ, यही तो किया है। छोटी छोटी बातों के लिए संघर्ष को बहादुरी समझा है, पेट पालने के लिए छीना झपटी को कर्म माना है, झूठी प्रशंसा के लिए स्वांग रचे हैं, इसी को सफलता मान लिया है। किसी बड़े लक्ष्य को समर्पित नहीं हो सका, किसी का दुख दूर करने के लिए अपने जीवन को उलीझ कर नहीं दे सका। सारा जीवन केवल दिखावा, केवल भोंडा अभिनय, केवल हाय हाय करने में बीत गया। इनोडेट का मामला अतिरिक्त विनय भावना से ढली हुई ऐसी अखुंड आत्मवेदना और गरिमामय लेखकीय ईमानदारी का एक महान भारतीय लेखक की अपनी निजी पहचान है। आत्मपहास और आत्मव्यंग का इतना मार्मिक रूप विरल ही दिखाई पड़ता है। कहना कठिन है कि तुलसी और निराला जैसी इस आत्मवेदना में कबीर की उलटवासी का अंश में कितना है, अन्यथा हिंदी का कौन सा पाठक है जो द्विवेदी जी के महान अवदान से अपरिचित हो। अनामदास का पोता उपनिषदकालीन भारतीय समाज का सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। इसमें छांदोग्य उपनिषद के रैक व खान को प्रमुख आधार बनाया गया है तथा उसके विस्तार के लिए छांदोग्य और वृदारण्य के प्रमुख पात्रों के विचारों तथा अन्य घटनाओं की सहायता ली गई है। उपन्यासकार यह लक्ष्य करता है कि छांदोग्य में एक से एक फक्कड़ और अक्खड़ विचारक मिलते हैं जो रूढ़ियों के बिल्कुल कायल नहीं। ऐसा लगता है कि छांदोग्य और वीरारण्य समकालीन उपनिषद हैं और दोनों के रचयिताओं में एक प्रकार की प्रच्छन्न प्रतिस्पर्धा है। एक में जो मुख्य और स्वाधीन विचारक है, दूसरे में गौण स्थान दे दिया गया है। इन दोनों उपनिषदों में व्याप्त प्रच्छन्न प्रतिस्पर्धा के वैचारिक तनाव के बीच से उपन्यासकार ने सृजनात्मक मूल्यों की तलाश की है। उसे यह आश्चर्यजनक लगता है कि प्रस्तुत आख्यान के प्रधान तत्वज्ञानी महर्षि और शस्तिपाद वृदारण्य के शक्तिशाली चरित्र नायक याज्ञवल्क्य से जो किंचित प्रभावित जान पड़ते हैं, पर अपने पिता उशस्त या उशस्ति चक्रायण की अखड़ता का रंच मात्र प्रभाव उनमें नहीं मिलता। यह भी कम जिज्ञासा का विषय नहीं कि रैक्व के संदर्भ में उशस्ति का स्मरण होना बिल्कुल स्वाभाविक होते हुए भी उनके सिद्धांतों की कोई चर्चा न तो उनके पुत्र अशस्ति करते हैं और न उनकी पुत्रवधु ऋतंभरा भी करती है। उशस्ति के बारे उपन्यासकार ने जो जानकारी हासिल की है उसके अनुसार वे भिक्षावृत्ति के विरोधी, श्रम को महत्व देने वाले, प्राण रक्षा के लिए उच्छिष्ट अन्न खाकर भी किसी प्रकार की हीनता से मुक्त, जाति धर्म निर्विशेष एक समतावादी आचार्य थे जो मिल बांट कर खाना विश्वास करते थे। उनमें फक्कड़ाना मस्ती के साथ ही अपने ज्ञान और पांडित्य का उचित अभिमान भी था। उपन्यासकार के अनुसार छांदोग्य के यही मस्त मौला और फक्कड़ ऋषि वृदारण्य में उशस्ति चक्राण के नाम से आते हैं और उसका अनुमान है कि उशस्त और उशस्ति एक ही है क्योंकि दोनों को ही चक्र का पुत्र बताया गया है। ध्यान देने की बात है कि आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी स्वयं अपने चिंतन में उपनिषद के ऋषि याज्ञवल्क से काफी प्रभावित दिखाई पड़ते हैं और फिर भी इस बात से क्यों चिंतित हैं कि वृदारण्यक में छांदोग्य के अखड़ ऋषि उशस्ति का तेज धूमिल पड़ गया है और याज्ञवल्क विजयी हुए। क्या यह दोनों उपनिषदों की प्रच्छन्न प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है? क्या रैक्व आख्यान में मस्त मौला और फक्कड़ जटिल मुनि तथा सिद्ध महात्मा की कल्पसृष्टि अप्रासंगिक और निरर्थक है? क्या यह महासंयोग है कि रैक्व आख्यान के जटिल मुनि तथा सिद्ध महात्मा का हुलिया छांदोग्य उपनिषद के तेजस्वी ऋषि उशस्ति से काफी मिलता जुलता है? और यह भी कि क्या यह कबीर की कल्प सृष्टि का रचनात्मक प्रसार नहीं है। वस्तुतः इस उपन्यास में वेदारण्यक और छांदोग्य निषद के याज्ञवल्क और अशस्तिपाद के तत्वज्ञान का पुनर्निर्माण, नई रचनाशीलता की तलाश में आधुनिक तत्वज्ञानी हजारीप्रसाद द्विवेदी के आत्मसंघर्ष का परिणाम है। चिंतन की गतिशीलता के लिए उपन्यासकार अपेक्षित अशस्त्र के लोक व्यवहार के अनुभव को आवश्यक मानता है और उनकी पूरक चरित्र के रूप में जटिल मुनि और सिद्ध महात्मा की कल्पना करता है, जो कर्म को महत्व देने वाले श्रमजीवी मुनि हैं। इस उपन्यास का एक अहरा आख्यान राजा जनश्रुति और रैक से संबंधित घटना पर आधारित है, जो इस बात का प्रमाण है कि उपनिषद अथवा रहस्य समझने जाने वाले ज्ञान को उन दिनों इतना महत्व दिया जाता था कि एक राजा अपनी कन्या देकर भी उसे हासिल करने में गौरव महसूस करता था। गाड़ी के नीचे बैठकर खाज खुजाने वाले तथा युवती कन्या के रूपाकर्षण से पिघल जाने वाले छांदोग्य उपनिषद की अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय चरित्र के रूप में कथानायक रैक्व का चुनाव कतिपय आलोचकों को चौंका देने वाला भले हो, किंतु वह अनेक लोक प्रमादों से घिरी और घर से भागे हुए बाणभट्ट और गोपाल आर्यक से बहुत बेमेल नहीं है। कथानायक की अनेक संभावनाओं से भरे हुए राजा सातवाहन का उन्नायक चरित्र भी इन कथानायकों से बहुत दूर नहीं पड़ता। संभवतः उद्धारकर्ता लोकनायकों की प्रकृति द्विवेदी जी की उपन्यासिक रचनाशीलता के अनुकूल पड़ती है। प्रेम के असीम सत्य और प्रतिष्ठा की इस उपन्यास का लक्ष्य है। यद्यपि बीच बीच में उनका पांडित्य कुलांचे भरता है, पर उसकी लोकोन्मुखी सीमा उन्हें भागने नहीं देती। द्विवेदी जी काम को आध्यात्मिक विकास में बाधक तथा प्रेम को नायक शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। रैको की पीठ में होने वाली खुजली को उपन्यासकार ने आधुनिक मनोवैज्ञानिक चिंतन की समकालीनता में व्याख्यायित किया है और अनुमान किया है कि ऋषि मुनियों को खुजली होती तो अवश्य ही थी, पर अत्यधिक संयम के कारण वे उसे खुजलाते नहीं थे। इस उपन्यास में पीठ की खुजली को रैको के अवचेतन मन की दुर्दम अभिलाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, जो शुभा जबाला के संपर्क में आने अथवा उसकी स्थिति में बढ़ जाती है और समाधि लगाने में भी व्यवधान डालती है। आगे चलकर जब रैक पर लोक सेवा जैसे कार्यों में विनियुक्त होने की बात सोचते हैं और भगवती रितंबरा के साथ घूमते हुए साधारण जनता के दुख दर्द से परिचित हो जाते हैं, तो प्रेम का स्वरूप भी लोकोन्मुखी होता है। सुख खुजली के कारण न लगने वाली समाधि अब इसलिए भी नहीं लगती थी कि आंखों के सामने भूखे नंगे बच्चे और कातर दृष्टि वाली माताएं दिखने लगती हैं। लोक व्यवहार और दुनियादारी के अनुभव से अनभिज्ञ होने के बावजूद रैको का चिंतन लोकोन्मुखी संभावनाओं से भरा हुआ है, जिसका विकास आगे चलकर होता है। इस बात में मूल तक पहुंचने का उनका प्रयास उन्हें बृहत्तर जीवन मूल्यों से जोड़ने में सफल होता है। अपने आरंभिक तापस जीवन में भी वे स्वर्गलोक का अंतिम सत्य नहीं मानते। उनकी दृष्टि में स्वर्गलोक का आश्रय मनुष्यलोक और जीवधारियों में जो प्राण है वही आकाशमंडल में व्याप्त वायु है। लेकिन उनकी विशेषता यह है कि किसी भी सिद्धांत को अंतिम सत्य न मानकर परीक्षा के द्वारा उसकी सत्यता की जांच करते हैं। पिंड से ब्रह्मांड व्यापी प्राणवायु को प्रमाणिक सत्य को परखने का अवसर भी उन्हें शीघ्र ही मिल जाता है, जब पूरे आकाशमंडल को उद्वेलित कर देने वाली वायु शक्ति के झंझावाती आवर्त में स्वयं फंस जाते हैं और आकस्मिक रूप से देवलोक के मनुष्य से उसका साक्षात्कार होता है। कीचड़ में धसी हुई बैलगाड़ी, मरा हुआ गाड़ीवान और थोड़ी दूरी पर बेहोश पड़ी जबाला को देखकर उनके मन में मानवीय करुणा का उद्रेक होता है और संकट में फंसे प्राणी मात्र की सहायता को सहज धर्म मानकर वे जबाला की ओर उन्मुख होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वायु सब कुछ का कारण है और सब कुछ वायु में ही विलीन हो जाता है, तो वायु के उपचार से इस प्राणी को भी राहत मिलनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने उसे शरीर पर उलझे हुए कपड़ों का एक सिरा उठाया और हवा करने लगे। इससे जो परिणाम निकला उससे उन्हें दोहरा आश्चर्य हुआ। एक तो यह कि उस मूर्छित प्राणी की चेतना वापस लौटने लगी और दूसरा यह कि जिस कपड़े से वह हवा कर रहे थे वह सूख गया। व्याकरण ज्ञान के आधार पर नारी और पुरुष के पद से परिचित और पदार्थ प्रत्यय से अनभिज्ञ वयस्क शिशु रैको का भोलापन जबाला को आकर्षित करता है। वह उन्हें शुभे संबोधन से परिचित कराने और लोक व्यवहार के अनुभव से उनके अधूरे ज्ञान को समृद्ध करने के कारण शुभा और गुरु बन जाती है। वस्तुतः यह आकस्मिक घटना युवा तापस के जीवन को बदल देने वाला ऐसा मोड़ सिद्ध होता है जहाँ से उनके चिंतन की दिशा ही बदल जाती है। मानवीय करुणा के उदय ने गौतम बुद्ध को संसार से विरक्त बनाया और उसी ने युवा तापस रैको को संसार की ओर उन्मुख किया। परम सत्य की खोज में निकले अनिकेत यायावर रैको को संपूर्ण सत्य का साक्षात्कार करने के लिए जीवित लोक में विनियोजित कर हजारीप्रसाद द्विवेदी ने निवृत्ति मूलक निष्क्रिय तप और वैराग्य का प्रतिख्यान किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि परम सत्य को इसी जीवन में, इसी लोक में और समाज में पाया जा सकता है। सामाजिक जीवन से पलायन कर जंगल के एकांत और पर्वत की निर्जन कंदराओं में उसकी खोज बेकार है। जब देश में हाहाकार और करुण क्रंदन का चित्कार सुनाई पड़ रहा हो तो उस ओर से आंख कान मूंद कर समाधिस्थ होने का प्रयास जीवन की निष्क्रियता का परिचायक है। द्विवेदी जी क्रियाशीलता को जीवन का सौंदर्य मानते हैं और मानवीय प्रेम ही कर्म सौंदर्य का आधार है। इस प्रकार तापस संस्कृति की व्यक्ति मुक्ति साधना को सामाजिक मुक्ति वाली सर्वहारा संस्कृति में रूपांतरित कर देना इस उपन्यास की उपलब्धि और उपन्यासकार के समकालीन आधुनिकता का प्रमाण है। इस उपन्यास के सामाजिक संदर्भों और जीवन मूल्यों को जोड़ने वाले सूत्र उनके मानवतावादी जीवन दर्शन में विन्यस्त हैं। हजारे प्रसाद द्विवेदी के इस उपन्यास में दूसरे उपन्यासों की तरह ही अतीत और वर्तमान तथा शास्त्र और लोक की समानता तो दिखाई ही पड़ती है। आधुनिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले दो चिंतन पद्धतियों मार्क्स के साम्यवादी दर्शन और फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी प्रभाव की समानांतरता भी लक्षित की जा सकती है। इसलिए उन्होंने छांदोग्योपनिषद की इस घटना को आधार बनाया है जो लोकवादी और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की संभावनाओं से भरी हुई है। रैक्व के पीठ की खुजली उसके मन की दुर्दम अभिलाषा है तो टूटी हुई गाड़ी में उसका लगाव उस अज्ञात काम ग्रंथ का स्मृति प्रतीक है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि रैक उससे कुंठित नहीं होते बल्कि सामाजिक जीवन के अनुभवों से गुजरते हुए उनके मन की दुर्दम अभिलाषा आत्मदान और सेवाभाव के रूप में प्रेम के सृजनात्मक रूपांतरित हो जाती है। शुभा की स्मृतियों से जुड़ी हुई टूटी गाड़ी अब खास को जाने वाले तापस की तपभूमि का प्रतीक मात्र नहीं रह जाती बल्कि शुभा की गाड़ी रैक की गाड़ी बन जाती है। अपने पराये का भेद मिट जाता है, प्रेम की एकांतिकता लोकोन्मुखी हो जाती है, तपोभूमि सामाजिक जीवन से जुड़ जाती है और गाड़ी लोक सेवा के काम में लगकर सार्वजनिक हो जाती है। लोक जीवन और लोक सेवा के साध्य है, मन की दुर्दम अभिलाषा उसका साधन मात्र है। इस प्रकार व्यक्ति मुक्ति का सामाजिक मुक्ति में रूपांतरण तथा व्यक्ति प्रेम और सामाजिक प्रेम में सामंजस्य वैश्वानर साधना के सामाजिक चरितार्थ होता है। चूंकि यह सामाजिक सत्य है अतः अविभाजित और संपूर्ण सत्य भी है। द्विवेदी जी दृष्टि से महत्वपूर्ण संपूर्ण सत्य वह है जिसमें समाज का अत्यधिक कल्याण हो। जबाला और स्वस्तिपाद, भगवती रितंबरा, जटिलमुनि, मामा और रिजुका आदि किसी न किसी रूप में रैक्व को स्तब्ध लोक चेतना को स्पंदित करते हैं और रैक्व भी उनके व्यवहारिक अनुभवों से प्रभावित होते हैं। लेकिन इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है और स्वस्तिपाद उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सामाजिक जीवन जीने के लिए उत्प्रेरित करते हुए कहते हैं। ही नोटेड कमा, विवाह के माध्यम से ही पुरुष और स्त्री पूर्णता प्राप्त करते हैं। संसार के सबसे बड़े लक्ष्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। ही नोटेड कमा बंद, भगवती रितंबरा भी ये संदेश देती हैं कि तुम्हारा स्वभाव प्रेम है, उसी के माध्यम से तुम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो। लेकिन जब वे नारी पुरुष को पूर्णता प्रदान करने वाली विवाह के बारे में सोचते हैं तो रिजुका के वैवाहिक जीवन की विडंबना उन्हें विचलित कर देती है और अपने वैवाहिक जीवन की निर्णायक स्थिति में वे जटिल मुनि के नोक शास्त्र पर भी विश्वास कर उनके निर्देशानुसार उद्वाह को स्वीकार करते हैं। जटिल मुनि के प्रभावशाली व्यक्तित्व से रैक्व तत्काल आक्रांत हो उठते हैं। व्यक्तित्व का तेज ऐसा कि रैक्व को लगा जैसे कोई भयंकर उल्का उनकी ओर बढ़ा रही है और जब हंसे तो ऐसा लगा जैसे कोई आधी सनसनाकर बढ़ती चली आ रही हो। रैक्व और जटिल मुनि दोनों ही कबीर की परंपरा से संबंध अक्कड़ फक्कड़ और मस्त मौला चरित्र हैं। दोनों अनाथ अनिकीत एवं सनातन धर्मा हैं। वनस्कार ने ज्योतिष के बल पर दोनों के भाग्य रेखाओं को भी मिला दिया है, पर इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि द्विवेदी जी ज्योतिष पर विश्वास करते हैं। वे ज्योतिष जानते हैं, मानते रहे। यह आकस्मिक नहीं है कि ज्योतिष की भाषा में बात करते करते जटिल मुनि सहसा भाग्य की रेखाओं को चुनौती देते हुए कर्म की प्रधानता को रेखांकित करते हैं। विधाता के दिए ही सभी रेखाओं का संकल्प शक्ति से जिधर चाहो मोड़ सकते हो। इन दोनों के मिलन की सबसे बड़ी चरितार्थता यह कि देवी भक्त जटिल मुनि अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा रैक्व के मन के भटकाव को, अकारण आरोपित पाप भावना को तथा काम प्रेम और विवाह की रचनात्मक भूमिका को बड़ी स्पष्टता के साथ समझाते हुए उन्हें भक्ति मार्ग की दीक्षा देते हैं। वे रैक्व को समझाते हैं। इनोटेड कमा, अन्य स्रोतों से छनकर आया हुआ सत्य बहुत बार अपने शुद्ध रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी बहुत भारी गलती यह थी कि तुमने कभी अनुभव नहीं किया कि मनुष्य क्षत्रिय के साथ एकमेक हो सकता है और यही तो तुम्हारे भटकने का कारण है। तुमने कभी अपनी शुभा के साथ अपने को एकमेक करके नहीं देखा, कदाचित तुम देख भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव द्वैत में आनंद पाने का है। इन्वर्टी कमाबंद, अनामदास का पोथा। अश्वल यौन ने रैक को जटिल मुनि के बारे में जो जानकारी दी उसके अनुसार ही इन्वर्टेड कामा, ये महात्मा सब तरह से विचित्र हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्म या वेद किसी के कारण नहीं है। ये अपने को अनेकतावादी बताते हैं, कहते हैं हर आदमी का सत्य अपना और निजी होता है, किसी भी बताए मार्ग पर आँख मूंद कर नहीं चला जा सकता। हर व्यक्ति का अपना सत्य है, उसी की खोज करनी चाहिए। वे अपने श्रम से उत्पन्न अन्न ही ग्रहण करते हैं, किसी का दिया कुछ नहीं लेते। इन्वर्टेड कामा। इस परिचय से जटिल मुनि उपनिषदकालीन के श्री ऋषि या मुनि की अपेक्षा मध्यकालीन शुद्र जातीय संतों की परंपरा के अधिक दिनकर दिखाई पड़ते हैं, पर आनंददास की टिप्पणी में प्रच्छन्न प्रतिस्पर्धा के शिकार वेदारण्य के उपेक्षित उशस्त्र ऋषि, जिनके तेज को याज्ञवल के सामने अस्वाभाविक रूप से धूमिल हो जाने पर चिंता व्यक्त की गई है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अपने श्रम की कमाई खाने वाले एक तेजस्वी मुनि के रूप में चित्रित किए गए हैं, जो यहाँ के आश्रमवासी ऋषियों के द्वारा उपेक्षित हैं, लेकिन लोकोन्मुखी तत्वज्ञानी महर्षि और शस्ति प्राद के प्रति अपार श्रद्धालु हैं। इन्हें अनेकांतवादी बताया गया है, और अनेकांतवाद जैन दृष्टिकोण की अपनी निजी विशेषता है, जिसका अर्थ है किसी प्रकार की चरमपंथिता को अस्वीकार करने का सिद्धांत। यह एक प्रयास है उपनिषद स्वीकृत तथा बौद्ध स्वीकृत मान्यताओं के बीच का रास्ता निकालने का। यह समझना कठिन है कि क्यों उपनिषदों के समय से ही मनुष्य मनुष्य के बीच पाए जाने वाली असमानता और वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए कर्म सिद्धांत को सहारा बनाया जा रहा था, और गीता में स्वयं भगवान ने घोषणा कराई गई कि मैंने वर्णों को गुण तथा कर्म के विभाग को ध्यान में रखकर बनाया है। शारीरिक श्रम को कितने निम्न दृष्टि से देखा जाता था, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि कुछ सबसे नीची जातियों के नाम उनके उद्योग धंधों के नाम पर पड़े हैं, और बहुत सी जातियों के नाम उनके पेशे पर पड़े हैं, जैसे अयस्कार लोहार, कुंभहार कुम्हार, चर्मकार चमार, तैलिकी तेली, नट नाचने वाला, रथकार रथ बनाने वाला आदि। ऊंचे वर्णों का उत्पादन श्रम से कतराना स्पष्टतः कर्म सिद्धांत के प्रच्छन्न प्रभाव का परिणाम है। भारतीय दार्शनिकों ने भौतिकवादियों ने इसका विरोध किया है। इन बातों का विरोध करने वालों को वेद विरोधी अथवा ब्राह्मण विरोधी कहकर प्रचार करने की परंपरा उपनिषद ज्ञान की तरह ही कम रहस्यमय नहीं है, अन्यथा ऋग्वेद के पुराने भागों में न तो वर्ण विभागों के दर्शन होते हैं और न वहाँ शारीरिक श्रम के प्रति किसी तरह के घृणा का भाव ही है। देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय ने लक्ष्य किया है कि इन्वर्टेड कामा आदिम अथवा अर्ध आदिम कविताओं का यह विशाल पंज कबीला में रहने वाले मनुष्यों के सामूहिक श्रम की प्रशस्ति अनगिनत स्थानों पर कहता है। भोजन सामग्री और संपत्ति में वृद्धि की बात यहाँ पद पद पर की गई है, और अनेक बार स्वयं देवताओं का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वे पशु चराने तथा भोजन सामग्री और भौतिक संपत्ति में वृद्धि करने के काम में मनुष्य का हाथ बटाते रहे हैं। इन्वर्टेड कामाबंद, भारतीय दर्शन। लेकिन सोचने की बात है कि आगे चलकर समाज में पुरोहितों और सामंतों का धार्मिक और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो जाने के कारण उत्पादन श्रम के साथ वर्णों का संबंध विभाजित हो जाता है, और ब्राह्मण धर्म के स्वर्णकाल के मसीहा मनु महाराज स्पष्ट निर्देश देखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वृद्धि अर्थात उत्पादन संबंधी व्यवसाय को न अपनाएं। ऋग्वेद के पुराने भागों में जहाँ भौतिक संपत्ति की वृद्धि में देवताओं तक मनुष्यों का सहयोग भी बताया गया है, वहीं मनु मेघातिथि जैसे तमाम धर्माचार्यों ने श्रम को घृणित बताकर उच्च वर्णों को इससे अलग रखते हुए युगपुर जहाँ परोपजीवी सुविधा भोगियों को पनपने का अवसर दिया, वहीं देश के आर्थिक विकास को भी अवरुद्ध किया। उपनिषदों में भी पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांतों के द्वारा उन मान्यताओं को पुष्ट किया गया है। जिस किसी संप्रदाय का आचार्य ने मूल वैदिक परंपरा से दूर पड़ती जाती इस परंपरा का विरोध किया, उसे ही वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी कहकर लांछित किया गया। इस उपन्यास में अनामदास की टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि उपनिषदों के ऋषियों में अनेक ऐसे थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था के जकड़न को तोड़कर श्रम के महत्व को स्थापित किया। टिप्पणी में स्वस्थ को गरीब स्वाभिमानी अक्कड़ फक्कड़ और मस्त बताया गया है, और साथ ही उनके विचार भी चौंकाने वाले हैं। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में स्पष्ट उल्लेख किया है कि समय समय पर ऐसे महात्मा होते रहे हैं जिन्होंने इस अभिशप्त वर्ण व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है। ऐसे अक्कड़ फक्कड़ चरित्र द्विवेदी जी के साहित्य और चिंतन में अनिवार्य रूप से स्वाभिमान और गरीबी से जुड़े हुए हैं। इसे उन्होंने अपनी जन्मभूमि की विषम भौगोलिक परिस्थितियों से संघर्ष करने वाले निवासियों के जीवन अनुभव से जाना है। इस उपन्यास की गरीब किसान कन्या रिजुका भी इतनी स्वाभिमानी है कि भीख मांगने के विरुद्ध परिश्रम की कमाई पर विश्वास करती है। स्वाभिमान गरीबी का उन्नायक तत्व है और हीनता उसका शाप है जो समझौता और भिक्षावृत्ति की ओर ले जाती है। सामंती पुरोहिती समाज व्यवस्था के पतन का सबसे अधिक खामियाजा उत्पादन श्रम से कटे हुए पुरोहित वर्ग को भुगतना पड़ा है और उससे भी विशेष रूप से गांव में फैले हुए पुरोहितों को जो पुराने धर्माचार्यों की धार्मिक रूढ़ियों से जकड़े हुए लोगों के होने के कारण शारीरिक श्रम को अत्यंत हीन समझते थे। जटिल मुनि की परंपरा, आरामदास की टिप्पणी और यशस्वी की ही परंपरा और उससे जुड़े हुए एक अन्य पात्र हैं सिद्ध महात्मा जो यज्ञ के विरोधी हैं, ब्राह्मणों के विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी हैं, यहाँ तक एकांत के तप और मनन के भी विरोधी हैं। राजा जनश्रुति के राजा पुरोहित आचार्य और दुम्बरायण जब उनसे मिले तो देखा कि महात्मा प्राय निर्वस्त थे। वे बहुत वृद्ध तो नहीं थे, केश उनके अभी काले थे, पर उनमें एक विचित्र प्रकार का तेज था। ऐसा लगता था कि किसी बिल के द्वार पर मणिधर सर्प ने अपनी मणि उतार कर रखती है। शरीर उनका काला था, नाक चपटी, कान बड़े बड़े, चौड़े और ललाट और सपाट। उनके निकट जो स्त्री पुरुष बैठे थे वे प्राय छोटी जाति के लोग थे, पर उनके चेहरे पर श्रद्धा की चमक थी। महात्मा सामने आग की धुनी जलाए बैठे थे, उनका सारा शरीर इसी धुनी के भस्म से पुता हुआ था। पास में एक तांबे का चिमटा था और एक मिट्टी का टोंटीदार पात्र भी, आरामदास का पोथा। जटिल मुनि और सिद्ध महात्मा दोनों ही द्विवेदी जी के मध्यकालीन बोध के अनुरूप ढाले गए पात्र हैं, जिनमें कबीर जैसा तेज, मुनि जैसा अखड़ फक्कड़ और कुतुमय व्यक्तित्व विद्यमान है। सिद्ध महात्मा भगवती रितंभरा की ही तरह लोक जागरण के कार्य में लगे हैं। राजा संस्कृति की जड़ता को स्पंदित करते हुए वे और दुम्बरायण के सामने बृहत्त जीवन मूल्य का प्रश्न उठाते हैं। नोटेड काम, परंतु तब तक यह झूठ ही रहेगा जब तक लोग केवल जनश्रुति की बेटी को ही अपनी बेटी समझें और प्रजा के बहु बेटियों को भी उसी प्रकार बेटी न समझे। नोटेड काम। लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा में भैरवी महामाया ने जिस व्यापक परिप्रेक्ष्य में पूरी ओजस्विता के साथ इस प्रश्न को उठाया था उसी ओजस्विता यहाँ नहीं दिखाई पड़ती। वे जबाला के मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए कोहलियों के नृत्य नाट्य की व्यवस्था का सुझाव देते हैं। समाज पर इन आर्यतर सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा के क्रम में वे यह बताना नहीं भूलते हैं कि अब तो आर्य ऋषि भी नाट्य शास्त्र को पांचवें वेद के रूप में मानने लगे हैं। राजा जनश्रुति की अकाल पीड़ित प्रजा की सहायता के लिए उन्होंने आचार्य को सावधान किया और बाद में उनकी प्रभावशाली बातों को सुन जबाला भी लोक कल्याण के लिए उद्विग्न हो उठी। भगवती रिदम्बरा के अनुभव संपन्न ज्ञान, उनकी निर्लिप्त सेवा भावना तथा हृदय की उदारता ने रैको की बंजर जिंदगी को जीवंत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रैको के चिंतन को गतिशील बनाने और उनके जीवन को सही दिशा देने में रितंभरा का महान अवदान उन्हें इस उपन्यास का महत्वपूर्ण चरित्र बना देता है। उनका ज्ञान व्यावहारिक जीवन में ढला हुआ इतना प्रभावशाली होता है कि उनके संपर्क में आने के बाद रैको और जबाला दोनों ही उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। रैको के मन में बैठी हुई पाप भावनाओं को गलत बताते हुए समझाती हैं कि तुम ऐसा कभी मत सोचो कि तुमने कोई पाप किया है और उसी पाप का दंड भोग रहे हो। तुम्हारे पेट की खुजली पाप के कारण नहीं बल्कि मन की गहराई में छिपी किसी दुर्दम अभिलाषा का परिणाम है। इन्वर्टेड कामा, तुम्हारा झुकाव प्रिय ब्रह्मा की ओर ही हो सकता है। प्राण के सूत्र को पकड़कर तुम परम सत्य को प्रिय रूप में पा सकते हो और प्रिय रूप का किंचित साक्षात्कार भी तुम्हें ब्रह्म तक, महासत्य तक पहुँचा सकता है। अर्थात तुम्हारा स्वभाव प्रेम है, उसी के माध्यम से तुम सत्य का साक्षात्कार कर सकते हो। इनोटेड कामापन, पाप और पुण्य की लोकवादी व्याख्या करती हुई वे रैक्व से कहती हैं। इनोटेड कामा, जिस कार्य से किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है वह पाप कार्य है, पर जिससे किसी दुख का दूर हो, इसका इलोक और परलोक सुधर जाए, रोगी निरोग हो जाए, दुखिया सुखी हो जाए, भूखा अन्न पाए, प्यासा जल पाए, कमजोर लोग आश्वासन पाए, ये सब पुण्य है। इनोटेड कामापन, द्विवेदी जी का मानना है कि मनुष्य अनंत संभावनाओं का स्रोत है। यदि उससे आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति हो तो वह सामाजिक जीवन में असाध्य साधन को सिद्ध कर सकता है। समाज की समस्या की वास्तविक कसौटी है, इसीलिए माँ रितंभरा रैक को समझाती है। इनोटेड कामा, अब इस बात की परीक्षा कैसी होगी, तू सचमुच सत्यवादी है। जब 10 मनुष्यों के संपर्क में आएगा, कहीं तेरे स्वार्थ पर चोट पहुंचेगी, उस समय अपना मतलब साधने के लिए झूठ नहीं बोलेगा, किसी बात को छिपाने का प्रयत्न नहीं करेगा, तभी न मालूम हो सकेगा कि तू सत्य का दृढ़ है। अकेले अकेले तो हर आदमी सत्यवादी और धर्मनिष्ठ होने का दावा कर सकता है। 10 जनों के संपर्क में आने से ही न उसकी निष्ठा की परीक्षा होगी, इन्हें उठ काम बंद। इस प्रकार द्विवेदी जी परम तत्व की भी समाज सापेक्ष व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। परम तत्व जीवन का निर्णायक नहीं है और धर्म कुछ कर्तव्यों और आचरणों से प्रकट होता है। नोटेड कामा, जो अपने आपके सुख सुविधा का ध्यान न रख कर दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है, सत्य से च्युत नहीं होता, दूसरों का कष्ट दूर करने के लिए अपना प्राण तक त्याग कर सकता है, वही धार्मिक है। वह परम और चरम तत्व के बारे में क्या मानता है, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वह कैसा आचरण करता है, औरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उनके लिए कितना त्याग कर सकता है, यही तय करेगा कि वह धर्मप्रायण है या नहीं। नोटेड कामबंद। ऐसा लगता है कि इसकी चरितार्थता के लिए ही मामा जैसे गुमनाम चरित्र की कल्प सृष्टि की गई है। नाम बड़ी चीज नहीं है, मामा का नाम ही इतना महान है कि उसमें नाम ही और नाम का एकाकार हो गया। राजा जनश्रुति के अकाल पीड़ित राज्य में भूख प्यास से बिलबिलाते बेसहारा बच्चों के लिए शागपात मधु और भगत के फल इकट्ठा कर उनकी प्राण रक्षा करने वाले फक्कड़ मामा झूठी कहानियां गढ़कर बच्चों का मन बहलाते हैं और गप्पों से थोड़ी देर के लिए बच्चों के उदास चेहरे पर चमक पैदा कर उन्हें जीने की कला सिखाते हैं। कहने के लिए उनका अपना कोई नहीं पर सारा गांव उनका है, हर बच्चों के ही नहीं गांव भर के मामा हैं। अटूट गवार सीधे सरल मामा धर्म और कर्म के, कर्तव्य और आचरण के, त्याग और तप के, दया और ममता के, जिजीषा और सेवा के मूर्तमान विग्रह हैं। सरलता ही उनकी विशेषता है और उनका झूठ परम सत्य के लिए भी चुनौती है। लोग जगाने वालों के लिए वह जगे हुए हैं, लोग के प्रकाश किरण हैं और बड़े से बड़े तत्वज्ञानी के लिए भी प्रेरणा शक्ति। मामा के क्रियाशील जीवन के संपर्क में आने से रैक्व जैसे तत्वज्ञानी तपस्वी भी की आंखें खुल जाती हैं। इनोटेड कामा, मैं जो गाड़ी के नीचे बैठकर तप कर रहा था वह झूठा तप था, सही तपस्या गाड़ी चलाकर की जा सकती है। इनोटेड कामा, और उनमें मामा के साथ गठर ढोने का संकल्प जगता है। लोग जगाने निकली भगवती रीतम महाराज मामा के झूठ में परमेश्वरानंद का संकेत दिखाई पड़ता है और उनकी जिज्ञासा में भी आत्मज्ञान का साक्षात्कार करती है। इनोटेड कामा, मुझे लगता है बेटा जिसे लोग आत्मा कहते हैं वह इसी जिज्ञासा के भीतर कुछ होना चाहिए। वे जो बच्चे हैं, किसी की टांग सूख गई है, किसी का पेट फूल गया है, किसी की आंख सूज गई है, ये जी जाए तो इनमें बड़े बड़े ज्ञानी और उद्यमी बनने का संभावना है। संभावना की बात कर रही हूँ, अगर यह संभावना नहीं होती तो शायद जिज्ञासा भी नहीं होती। आत्मा उन्हीं अज्ञात अपरिचित अनुध्यात संभावनाओं का द्वार है। इनोटेड कामबंद। मामा वस्तुतः अनंत संभावनाओं से भरा हुआ एक समकालीन मनुष्य है, मनुष्य सामान्य और जागरूक, आत्मविश्वास से भरा हुआ कर्मठ और उद्यमी। उसके इस विकास में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का अभाव कहीं भी बाधक नहीं है। इनोटेड कामबंद। अशिक्षा के कारण कोई सुसंस्कृत होने से वंचित नहीं रह जाता। शिक्षा से जानकारियां बढ़ती अवश्य, पर चित्त का संस्कार तो घर और परिवेश के संस्कार से ही होता है। इनोटेड कामबंद। द्विवेदी जी की दृष्टि में इनोटेड कामा, मनुष्य सुसंस्कृत हो इसके लिए आवश्यक नहीं कि सुशिक्षित भी हो। सुशिक्षित होना अच्छी बात है, पर वास्तविक तब तो सुसंस्कृत होना है। इनोटेड कामबंद। इस प्रकार द्विवेदी जी ने अपने चिंतन में संस्कृत को शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण माना है। इनोटेड कामा, जिज्ञासा है जो जीवन रहेगा, जीवन रहेगा तो अनंत संभावनाएं रहेंगी, सब चलता रहेगा, यही प्रकृति है। इसे स्वनियंत्रित रूप से चलाने का प्रयास शुभ है, वही संस्कृति है। इनोटेड कामा, जीने की इच्छा तो सब में है, पर मामा के जिलाने की इच्छा भी है, इसी अर्थ में वह विशिष्ट है और सच्चा आत्मज्ञानी भी। तत्वज्ञान अंततः लोकहित में लीन हो जाने का ही ज्ञान है। वह भौतिक जगत और लोक जीवन से परे नहीं है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के लोकोन्मुखी पांडित्य के प्रतीक महर्षि अस्वस्थ के गतिशील चिंतन का यही निष्कर्ष है। वे युवा तापस रैक्व को समझाते हैं। नोटेड कामा, सत्य बड़ा गुण है, स्वाध्याय और सत्संग परम तप है और पर दुख का तत्ता सबसे बड़ा मानवीय गुण है। नोटेड कामा, फिर एकांत तप का प्रत्याख्यान करते हुए कहते हैं। नोटेड कामा, एकांत का तप बड़ा तप नहीं है बेटा। देखो संसार में कितना कष्ट है, रोग है, शोक है, दारिद्रता है, कुसंस्कार है, लोग दुख से व्याकुल है, उनमें जाना चाहिए। जिसे यह सत्य प्रकट हो गया है कि सर्वत्र एक ही आत्मा विद्यमान है, वह सुख दुख कष्ट से जर्जर मानवता की कैसे उपेक्षा कर सकता है वत्स। इनोटेड कामा, निष्कर्ष यह है कि इनोटेड कामा, दूसरों के सुख के लिए अपने आप को दरिद्राक्षा की तरह निचोड़ कर दे देना, इससे बड़ा तब मुझे मालूम नहीं है। इनोटेड कामा, प्रेम और भक्ति पर आधारित यह भाव सूत्र हजारी विषा द्विवेदी की सांस्कृतिक चेतना का केंद्रीय स्वर है, जो उनके सभी उपन्यासों में ही नहीं उनके समुचे साहित्य में झंकृत होता रहता है। मामा का लोकार्पित जीवन इसी भावना सूत्र का विग्रह है। लोक और संस्कृत के संतुलन बिंदु पर खड़ा मामा एक समकालीन भारतीय मनुष्य है और द्विवेदी जी के उपन्यासों में ऐसा एकलौता चरित्र है जिसे उन्होंने इतनी आत्मीयता के साथ अपने एकांत व्यक्तित्व की निजता सौंपी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि गप हाँकने में वह व्यंग के शास्त्री के भी कान काटता है और कहीं न कहीं यह उनकी ऋजुता और चिंता दिली का रहस्य है। इसी प्रकार आनंददास का पोता मनुष्य की मूल मनोवृत्ति उसकी काम भावना के अकुंठ प्रतिष्ठा का उद्घोष करता हुआ उसे प्राण शक्ति की शास्त्रीयता और सृजनात्मक प्रेम की लोकोन्मुखता में व्याख्यायित करता है। महर्षि अस्वस्तिपाद और भगवती दिदम्बरा को उपन्यासकार के लचीले और गतिशील शास्त्र ज्ञान के प्रवक्ता हैं। याज्ञवल की प्राणप्रियता की व्याख्या के सहारे उसकी लोकवादी व्याख्या करते हुए प्रेम को परम पुरुषार्थ के रूप में घोषित करते हैं। एकांतिक तप के प्रत्याख्यान और लोक शक्ति के स्वीकार द्वारा उपन्यासकार मानवीय प्रेम को जीवन सत्य के रूप में स्वीकार करता है।